राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 मई 1993 साय लगभग 4 बजे गीता वंसर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण।
सबको दंडवत करो, सामने आए सैकड़ों आदमी आते आपने कहा कि सबको दंडवत करो, सामने आते सबको दंडवत करो, तो सामने आए सैकड़ों को राम राम साथ में प्रणाम किया हो किया जाता है क्या ना किया जा सकता है, साथ में करो। सामने तो सैकड़ों प्राणी दिखेंगे, उनको दंडवत करते करते 2-3 घंटे बीत जाएंगे, तो कितनी देर तक करके काम में लगे हैं तो? अच्छा कर दो। निमी राजा का आप प्रसंग आता है, 9 जोगेश्वर आए, तो 9 जोगेश्वर आए, उनको एक साथ ही प्रणाम किया, पीछे एक ही को प्रणाम किया। और एक साथ क्यों किया कि एक एक को प्रणाम करें मर जाए तो फिर सबको प्रणाम होगा नहीं, ऐसा एक साथ कर लिया, फिर अब परवाह नहीं, अब फिर निर्णय किया, इस बात एक साथ प्रणाम कर देना चाहिए। कोई दंडवत करने से मना करे या किसी को दुख होता हो तो उसे दंडवत करे या नहीं, उसे नहीं करना, अपना दंडवत करना है दुख देना है, मना करता से बात जो आज्ञा मना बस मन से कर लो, मना करे तो कर दो, और कोई ना करने से मना करे या करने से दुख हो तो ना करो। दिन में कितनी बार और कितनी देर तक दंडवत करें, सारा दिन तक दंडवत करते ही रहे तो लिखने का काम करें ना करें, लिखने का काम करते समय करते रहो और समय जितना मिले उतना करो, सामने आ जाने पर दंडवत करो, न हो तो मन से करो। एक बात और पूछने की, वो नहीं पूछी, माना हाथ में सामान हो कोई बोल रहा है ले जा रहे हैं सामने आ गए तो क्या करें, ये पूछी नहीं थी।
सामान देता नहीं
है जी,
उसके पास सामान तो रहता नहीं, बेचारा अकेला फिरता है।
तो उसको मन से अनुरोध कर लो, ऐसा न बने तो मन से अनुरोध कर लो, मन से तो कोई बाधा नहीं लगती, मन से दंडवत सब करना शुरू कर दो, ऊपर से न सही बहुत लाभ होगा, करके देखो। बुद्धि भगवान की उनसे दंडवत क्रिया की नहीं, केवल दंडवत करने की क्रिया नहीं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं इस रूप से भगवान आए हैं ये भाव मुख्य रहना चाहिए। दंडवत मन से हो न हो, नमस्कार कर लो, मन से नमस्कार कर लो, परंतु ये भगवान है ये भाव होना चाहिए। भागवत में आया है नरेश भिक्षम मत भावम पुंसो भावे तो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा व्यधि। मनुष्यों में मदभाव करता है कि भगवान है, ए भगवान है, ये भगवान है, चुपचाप भगवान कृष्ण। नरेश स्वभिक्षणम मदभावम पुंसो भाव ये तो ऐसे पुंस करता रहे तो स्पर्धा असूया तिरस्कारा साहंकारा, अहंकार के सहित तिरस्कार दोष दृष्टि ईर्ष्या ये सब नष्ट हो जाएंगे। इतने दोष अंतःकरण के नष्ट हो जाएंगे। साहंकारा अहंकार के सहित सब नष्ट हो जाएंगे। हरदम ऐसा करता रहे जो आदमी दिखे उसको नमस्कार कर ले, भाई हो बहन हो, कोई छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो जवान हो। नरेश भविष्य मत भाव मनुष्य जाते पुरुषो भाव ये तो चिराग बहुत जल्दी काम हो जाएगा। एक भी भाई बहन कोई बिना नमस्कार न जाए जाए तो उसको पीछे से कर ले और उस स्कूल में नमस्कार कर ले फिर कर ले। ऐसा करता रहे बड़ी सावधानी के साथ। तो स्पर्धा ईर्ष्या स्पर्धा और दोष दृष्टि और अहंकार सब लीन हो जाते, सब विकार शांत हो जाएंगे। ये बात आ रही नारायण 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 ये बात है।
ये सज्जन कौन है इनके, ये दो पेज में किन सज्जन का प्रश्न है?
इतना बड़ा भी प्रश्न छोटा छोटा होना चाहिए लंबा तो।
ये दो पन्नों में किसका प्रश्न है? प्रश्न के लिए है ही नहीं
प्रश्न करता है क्या करोगे? अरण्य रोदन है, जंगल में रोवे तो कौन सुने? तो प्रण करने वाले है ही नहीं तो क्या करे, कौन सुने, किसको सुना है भाई? डरो मत नारायण डरते क्या हो, हमें पूछा ऐसा क्या डरना नहीं। नारायण 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 कागज हम कब पढ़े भाई? इधर व्याख्यान दे रहे हैं वो कागज पढ़ते रहे बैठे, बहुत समय लगता है। खास खास बात
में ये पूछा है कि आपके इतने लोग सत्संग सुनते हैं उनमें से किसी एक को भी फायदा हुआ है क्या?
हम तो कहते हैं सबको फायदा हुआ। आप एक को कहते हैं, हम कहते हैं सबको फायदा हुआ है। ये सब पागल नहीं है, अगर फायदा नहीं तो दूसरे आवेंगे ही नहीं। सब पागल थोड़ी, फायदा न हो तो कोई आएगा ही नहीं दूसरे दिन। आप कितने एक बार पधारते हैं बताओ?
कोई तो एकदम नया आदमी लगा
और नया ही है, तर्की भी है नास्तिक भी है। हम प्रतिज्ञाते हैं इसका उत्तर दो हो कि कुछ भी फायदा न हो तो अपना समय बर्बाद कौन करेगा? क्या सब पागल है? उस दिन कुछ तो फायदा होता है। ऐसे फायदे में एक आदमी नहीं रह सकता। बढ़नी से सत्संग हो रहा था तो श्री सेठ जी बोले गोविंद का जी कि सत्संग से लाभ होता है, उन्होंने कहा वहां वो जो रास्ता चलता है गंगा जी के उस पार अथवा इस पार कोई एक मुसलमान भी देखता देखता चला जाएगा वो भी लाभ से वंचित नहीं रहेगा। क्योंकि उसका लाभ क्या होगा कि हिंदू लोग हैं अपने धर्म की बात करते हैं अपने कोई अपने मजहब की बात करते हैं कोई ईश्वर की बात करते हैं ऐसा कुछ न कुछ फुरना उसे होगा इसकी तो याद आएगी कम से कम तो वंचित कैसे रहेगा वो सत्संग नहीं करता केवल सुनकर वहां निकल जाता है मुसलमान है हिंदुओं पर भी आस्था ही नहीं धर्म पर भी आस्था नहीं उसको भी लाभ होगा। इस बार से सत्संग करने वालों को लाभ होता है परंतु जैसे बाहर से लाभ दी से ऐसा नहीं होता है भीतर लाभ होता है बिल्कुल होता है। लाभ से वंचित एक भी नहीं रह सकता। नफा वस्तु में है नहीं नफा भाव में हो भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खो भाव गिर जाता है तो कंग लग जाता है भाव हाथ लग जाए तो धनी हो जाता है। तो वो भाव तो बाजार के अधीन है और ये भाव अपने मन के अनुकूल जैसा वैसा भाव है उसके अनुसार फल होता फल होता जरूर है। शेर ने ये कहा कि हम लोग बनिए हैं बढ़िया लोग हम बिना लाभ की चीज में जाते ही नहीं कभी जिसमें घाटा वो काम हम नहीं करते हम बढ़िया लोग घाटे का काम नहीं करते हम तो हम करते हैं नफे का काम करते हैं घाटे करते हैं तो लाभ होता है। अब इसमें तर्क करो हम करें हम तरक करें कि लाभ हो तो देखने में आता नहीं दुकान पर वो झूठ कपट करते हैं ये माइयों घर में जाती फिर लड़ाई करती है कर्म मानती है नहीं तो क्या लाभ हुआ बताओ। सही बात मन ऐसा तो कम से कम भाव आएगा कि हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो जो गलत कर रहे हैं वो छूटेगा गलत तो छूटेगा ही जो ठीक नहीं करते हैं ऐसा भाव आने पर वो छूटेगा। आप लाभ चाहते हैं बड़ा सारा कि सत्संग गया और तत्व की जीवन मुक्त हो जाए तो वो भी होते हैं पर सब हो जाए ऐसी बात नहीं है सबके उतने लालसा नहीं है। अगर तत्व की लालसा हो और वे करे तो ज्यादा कम किसी को ज्यादा मन तत्व ज्ञान भी हो सकता है जन मुक्त हो सकता है सदा के लिए कृतकृत्य हो सकता है प्राप्त प्राप्त भी हो सकता है कृतकृत्य प्राप्त प्राप्त भी है और ज्ञात ज्ञात ये तीन बात हो जाएगी। तीन शक्ति है मनुष्य में जानने की शक्ति है एक मानने की शक्ति है एक करने की शक्ति है ये तीनों पूर्ण हो जाती है। मानने की शक्ति में प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है करने की शक्ति कृत कृत करना बाकी नहीं रहता है ये ज्ञात ज्ञात भी जानना बाकी नहीं रहता है। यो माम एव मसुमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सर्वविद भजति माम सर्वभावे व्यवहार पूर्ण हो जाता है तस्य कार्यं न विद्यते कृत कृत व्यस्त भारत ऐसाया जरूर लाभ होता है। हमारे तो मन में ऐसी आती है कि जोरदारी से अगर सब जीवन मुक्त हो सकते हैं जीवन मुक्त हो सकते हैं तत्व की हो सकते सब के सब परंतु जो इच्छा करेंगे इस तत्व की लालसा होगी वो तो हो ही जाएगा, पर होगा तभी कि सबसे इस काम को मुख्य समझेगा। ठीक है, सत्संग करते हैं, ठीक है, तो करते ही होगा, मामूली होगा, पर हमें तो तत्व कोई प्राप्ति करना है, तत्परता हो जाए तो कृत कृत्य प्राप्त प्राप्तव्य है और ज्ञात ज्ञातव्य है। ना जानना बाकी रहता, ना करना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता, पूर्णता हो जाती है। ये भी हमारी भावना तो हमारी भावना तो है, पर औरों ने भी कहा है एक हमारे सन्नी केशवराम जी, उनकी बात कही, वो कहते हैं हजारों लाखों को तत्व ज्ञान हो सकता है, लाखों एक बड़ा शीत है, बहुत हो सकता है। मैंने पूछा नहीं कितना को हो सकता है, तो कहो अपने आप शांत, ये तो बड़ी सीधी बात, लाखों को हो सकता है,
ऐसी
तो करने से लाभ होता है। हम तो कहते हैं करते नहीं तो सुनने से भी लाभ होता है, नहीं करे तो भी होता है, करे तो करना ही क्या है, केवल सुनते हैं, सुनने से भी लाभ होता है। टेप चाप चलते हुए मृत्यु श्रुति परायण, सुनने के परायण हो जाए तो हो जाएगा, अनुत्तर परायण हो गए और विचार करे उसमें अनुभव करे तो बहुत जल्दी होता है। ऐसी बात
पांच बजे की प्रार्थना के लिए जल्दी आना चाह रहा है,
हाँ।
और रास्ते में कहीं गोबर में फिसल गया, गिर गया, पड़ गया,
हाँ।
और वहाँ उसके प्राण निकल गए,
हाँ।
उसको फायदा होगा कि नहीं?
जरूर होगा, बद्रीनाथ जाते हुए मर जाए तो कल्याण होगा, आते हुए तो कल्याण ठेका नहीं है। देख कितनी उल्टी बात है, बद्रीनाथ जाते मर जाए तो कल्याण हो जाए, आते हैं पता नहीं, अरे दर्शन कर लिया साक्षात उसे तो पता नहीं है, जाते हुए कल्याण हो जाए, अरे जाते हुए के भगवान ध्यान में रहते हैं, आते हुए के ध्यान में घर रहता है, घर जाते हैं वहां करेंगे कल्याण तो भाव से होता है, वो के सत्संग में जा रहे हैं तो भाव तो हो जाएगा, जितना जैसा जैसा भाव होगा उतना उतना लाभ होगा, माप तो ले ठीक थर्मामीटर लगाए, ये बात तो कहते ऐसा ऐसी बात है तो आप बंद क्यों कर देते हो, यहाँ आने के बाद बंद कर देते हो तो कोई बेचारा बाहर रह जाए तो क्या दशा होगी उसकी, तो आप बाधा देते हो कल्याण में, कुछ नहीं कि बाधा एक दिन देगा दूसरे दिन सावधान ज्यादा हो जाएगा, और उस दिन भी जितना दुख ज्यादा होगा उतना फायदा हो ही जाएगा। भाई भूख पर भोजन बढ़िया लगता है तो पहले बेपरवाह जो देरी करता है, नहीं फिर दुख ज्यादा हो तो भूख ज्यादा लगती है तो लाभ हो जाता है। हमारी बात सुनने से ही लाभ होता है ऐसी बात नहीं है, उसका जितना अधिक भाव होता है सुनने का उसको उतना ही अधिक लाभ होता है। अलग अलग है भाव, आप अलग अलग पूछो सत्संग करने वालों से क्या बात हुई, कोई कहते ये बढ़िया हुई, कोई कहते ये बढ़िया हुई, ये बढ़िया हुई, ऐसे पांच सात महीना मिलकर आपस में बात करे तो बढ़िया एक एक बात सबको बढ़िया मिल जाए, दस आदमियों को दस बात मिले तो दसों की दसों सब दसों को मिल जाए, तो सत्संग सुनने के बाद आपस में चर्चा किया करो बैठ कर, उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है, विशेष ख्याल होता है, इस बात लाभ जरूर होता है। और करो शंका करो।
एक दुहा लिखा हुआ है कि एक दीपक जलता है उसके साथ में दूसरी दुहा रखते हुए जलने लग जाती है, तो ये दुहे का अर्थ क्या है भगवान? एक दीपक जलता है उससे अनेक दीपक जल सकते हैं।
बोल जी, एक को ज्ञान होता है, अनेकों ज्ञान होता है, अनेकों को ज्ञान चीज है, वो भाई बहनों ने मान रखा है कोई नई चीज है, नई 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 चीज होगी सबको बराबर नहीं होगा, सबको बराबर समय नहीं लगेगा जिसका निर्माण करना हो, परंतु जो चीज सदा सबके पास सब समय में वो रहती है उस तरफ ख्याल हुआ ज्ञान हुआ। ज्ञान कोई निर्माण नहीं होता है, मोक्ष को ये मोक्ष कोई पदार्थ पैदा नहीं होता है, कोई देश विशेष नहीं है, वो तो सब में है, सब समय में है, उसके ख्याल आया कट काम हुआ, केवल ख्याल आना चाहिए। हमारे को बातों से बहुत ज्ञान होता है, पुस्तकों के पढ़ने से, आप लोग प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों से, वाक्य होता है उन वाक्य से, बड़ा ज्ञान होता है, हमें लाभ होता है भाई। आपकी आप जाने मेरी धारणा से लाभ होता है, सबको होता है, जो हमारे को होता है तो आपको क्यों नहीं होगा? एक बात बताऊं, परमात्मा से दूर रहकर परमात्मा को नहीं जान सकता और संसार के साथ घुल मिलकर संसार को नहीं जान सकता, ये सिद्धांत। अभी जो शंका करो जितनी बात संसार के शरीर के साथ जो घुलमिल रहता है वो संसार को नहीं जान सकता, परमात्मा को नहीं जान सकता, सीख सकता है, जान नहीं सकता। परमात्मा के साथ एक होने से परमात्मा को जानेगा, संसार से अलग होने, शरीर से अलग होने पर संसार को जानेगा।
एक होता है फिर
जानना होगा, एक परमात्मा का है,
एक होने के बाद फिर जानना रहेगा क्या?
तो एक जानना रखना नहीं, बाकी रखना ही नहीं है, यही जानना है, और एक हो बिना नहीं जान सकता, तो एक जानना बाकी नहीं, बाकी रखना क्यों है अपने? एक वो जान ही जाएगा एकदम, अब इसको खुला सकें थोड़ा। ज्ञान होता है जो वस्तु है उसका, वो जो चीज मौजूद है सदा नित्य निरंतर, कभी जिसका वियोग नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो कायदा उसका वैसा का वैसा ही है, तो वैसा का वैसा कायदा है, तो वैसा होने से ही उसका बोध होगा। वैसा का क्या मतलब? कि ये जो स्वयं आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, इस वास्ते अभिन्नता से ही सही ज्ञान होगा, और शरीर और संसार से अलग है तो अलग होने से ही ज्ञान होगा, है जैसा वह ज्ञान होगा ना, शरीर के साथ संसार के साथ एक तरह एकता रखता हुआ परमात्मा तत्व की चर्चा कर सकता है, परमात्मा का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर शरीर के संसार के साथ रहने वाला नहीं है ये, ना शरीर साथ रहता है ना संसार साथ रहता है, तो इसके साथ रहने से ऊंधा उल्टी ज्ञान हो गया, कैसे ज्ञान होगा? और परमात्मा के साथ एकता साक्षात एकता हो जाता होता नहीं, परमात्मा के साथ अपना संबंध है, शरीर और सास के साथ संबंध नहीं है, ये पहले बोध होता है, इसके बाद बोध हो जाता है। तो संसार से शरीर से अलग होने पर बोध होता है, क्योंकि संसार से शरीर से अलग है, क्यों संसार छूटता है शरीर छूटता है, ये अलग है, ये बात अनुभव है, इस वास्ते इससे अलग होने का ज्ञान होता है। परमात्मा वो स्वयं अभिन्न है, तो इसका ज्ञान अभिन्न होने से असली ज्ञान होगा, जब तक भिन्नता है तब तक असली ज्ञान नहीं होगा, ये बात है। इसमें भी शरीर और संसार के साथ एकता है, ये महान बाधक है, इसका जब आदर रहेगा मन में, पदार्थों का भोगों का मान का बड़ाई का मन में महत्व रहेगा, तब तो परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता, ऐसी पक्की बात है। अब गौर सुनकर खूब गौर सुनकर अच्छा होगा, तात्विक बातों में जो जो संदेह उठे त्यों तो हुआ बहुत विशद होगा, सच हो जाएगा निर्मल। बोलो अब ये बात बताई आपको, क्या इसमें आपको पसीना आया कि जोर पड़ा कुछ? और कैसी बात लगी आपको बताओ? बहुत विचित्र बात है, मेरे को लगी है ऐसी, जब ये पढ़ी तो बात ऐसी कितनी भयंकर बात कही है, परमात्मा से अभिन्न हुए बिना परमात्मा तत्व ज्ञान नहीं होता, और संसार और शरीर से अलग हुए बिना न संसार का ज्ञान होता न परमात्मा का ज्ञान होता। अब इसके साथ है कैसे होगा परमात्मा का ज्ञान? स्थिति कैसी? स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जैसे थम्बे से हम अलग हैं, इस तरह शरीर से अलग अनुभव होगा, क्योंकि शरीर बना है छूट जाएगा, थम्बा भी बना है छूट जाएगा, ऐसी हो गई। मैंने कहूँ गया संसार नहीं है,
संसार झूठा है,
मैंने कब कहा झूठा भाई? ये मुफ्त में मेरा कंठ मत पकड़ो, मेरे तो रोष हो गया मुफ्त में, मैंने कहा ही नहीं, आपसे जुड़ी आप बात कहते दूसरे ने सुनी हुई आरोप करते मेरे पर, ये न्याय है क्या? बोलो संसार है नहीं, संसार झूठे, मैंने कहा कब कहा? मेरे को लागू ऐसा पड़ेगा,
क्या भगवान की झांकी जो हमारे चित्त में उतरती है वो और ये दिखाई देने वाला संसार दोनों एक जैसी अनित्य है क्या?
ना, भगवान चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, भगवान तो सत्य निकलेंगे, और ये संसार कितना ही पक्का हो जाए हृदय में दृढ़ कर लो तो ये कच्चा निकलेगा, क्यों कच्चा है ये भगवान क्यों सच्चा है, ये कच्चा है, कच्चा तीर्थ बिगड़ने वाला है, सब बिगड़ रहा है, कच्चे की पहचान क्या, कच्चा मिट रहा है, ये प्रत्यक्ष है। हमारी बात है तो नगद है, नगद उधार नहीं है, उधार नगद उधार नहीं है। तत्काल रहने वाला चाहिए, असली भूख लगे तो तत्व ज्ञान हो जाए। अब भूख तो अब है धन की, स्त्री की, पुत्रों की, मान की, बढ़ाई की, जीने की, सुख की, सुविधा की, भगवान मिले कैसे मिले। सुनते हो भगवान की प्राप्ति हो जाए, हो जाए तो कैसे हो जाए भाई। भीतर में एक लालसा परमात्मा की जो और कोई भूख नहीं है। जीवे चाहे न जीवे, धन मिले चाहे न मिले, मान मिले चाहे न मिले, अन्न भी मिले चाहे न मिले, हमें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है। फिर देखो ऐसे अनन्य भाव से होता है काम। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। ये बात
ज्ञान चित्त की वृत्ति है क्या?
वृत्ति वो भी ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं हो। ज्ञान तो इंद्र से देगा तो ये पेड़ है दिखता है, ज्ञान है ही। सत्य की वृत्ति ज्ञान में है, ज्ञान है ये भी। इंद्रियों की वृत्ति ज्ञान है, चित्त की वृत्ति ज्ञान है, मन की वृत्ति भी ज्ञान है, बुद्धि की वृत्ति भी ज्ञान है, सुन करके जो होते थे वो भी एक ज्ञान है। ज्ञान सात्विक राजस तमस तीन बताया गीता में। बीस इक्कीस बाईस अषाढ़ में त्याग सात्विक राजस तामस। तामस ज्ञान में भगवान ने ज्ञान पद नहीं दिया, सात्विक राजस में तो ज्ञान पद दिया। तामस ज्ञान पद नहीं है, क्या ज्ञान है पूरे ज्ञान क्या क्या है ज्ञान करने स्वर महा पहले कह रहे थे ज्ञान कर्म कर त्रिधेय गुणभेद। ज्ञान के तीन भेद है, तो सात्विक राजस में ज्ञान पद है, तामस में ज्ञान नहीं है। पढ़ लो आप हेतु कृष्ण वरे कृष्ण कार्य शक्त महेतु अतत्थान तत्तामस मुदा यह तो तत् कह रहे ज्ञान क्या कहें इसको। गीता में पद दिए बड़े सुन सुन करके साथ साथ बहुत विलक्षण सर्विन्यास विलक्षण है गीता का। हाँ फरमाऊंगा क्या पूछते हैं तो ठीक रहता तो ज्ञान नाम है जानना। जानना कुछ भी जानना ज्ञान है, कुछ भी जाने। ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी, ये भी ज्ञान है। ये खाद्य है अखाद्य है ये भी ज्ञान है। ये कर्तव्य है अकर्तव्य है ज्ञान है। ये भाई बंधु है ये हमारे नहीं है ये हमारे, ये ज्ञान है। सब ज्ञान है, जानना है। जानने से ही काम चलता है, बिना जाने कोई काम होता ही नहीं, कर ही नहीं सकते। किसी बात को सीखो तो ज्ञान होगा तब होगा। तो ज्ञान सबका है, पर तत्व ज्ञान की जो बात चलती है वो तत्व ज्ञान की है। वास्तव में जैसा हो वैसा का वैसा जानना ज्ञान है। संसार है जैसा का जैसा ज्ञान होने से त्याग हो जाएगा और जैसा तैसा परमात्मा ज्ञान और से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी एकदम। व्यवहार में भी जो आदमी ठीक आदर करता है बातों का तो उसको बहुत ज्ञान हो जाएगा, और आदर बिना रोजाना काम करते रहे ज्ञान नहीं होता। हमने देखा ये माताएं है ना, अपने बच्चों को रोजाना भोजन कराती है पर भोजन कराना आता नहीं, रोजाना रसोई बनाती है रसोई बनाना आता नहीं, रसोई परोसती है परोसना आता नहीं। अब आश्चर्य को कैसे है? बालक को भोजन कराना हो तो सब नहीं जानते, ऐसा नहीं कहता हूं, क्योंकि उम्र बीता भी जानते नहीं। बालक को भोजन कराना हो ज्यादा नहीं परोसना, थोड़ा सा परोसना, वो खा ले फिर थोड़ा सा परोसना तो अच्छा जीव रहेगा, ज्यादा परोस दो तो थोड़ा सा परोस दो। भोजन परोसना चाहिए, कैसे परोसना चाहिए? घनी जगह मैंने देखा साग परोसते हैं पहले, फिर से रोटी परोसते, फिर जो मुख्य रसोई है लाडू जलेबी लाडू जलेबी पहले परोसना, हलवा है तो हलवा पहले परोसना, जो मुख्य रसोई है वो पहले परोसना। साग आदि के व्यंजन है पीछे लगाव है तो ये भोजन हो रही है, मैंने बहुत देखा है साग परोसना आवे कहा। मैं तो आप देखता हूँ दीदी पूछ रहे वो एक कूड़े के तुमने पेड़ तो मैं पहले भर लूंगा, असली माल तो लाओ पहले। भोजन करना नहीं आता मेरे को, भोजन करना आता आप ठीक गीता को समझो तो ब्याह कैसे करना चाहिए आ जाएगा, जो गीता में जिस विषय का वर्णन नहीं है वो आ जाएगा, वो ज्ञान आ जाएगा। ऐसी गीता भी नहीं सुन पा बहुत अनुभव, ऐसे सत्संग करने से सब ज्ञान होता है। ये बजरंग गया करता पद समझे, बनाने में बता पड़ता है ये रसोई बनाने में, सब बात कैसे बताऊं, कच्ची पक्की रसोई की तरीके होती है। मुख्य ये बात है कि रसोई की सामग्री पहले तैयार करके फिर चूल्हा जलाना चाहिए, पहले चूल्हा जलाते आग जलती रहती है और साग दीजा रहते भी चलते हैं देर से, तो आग जलती मुफ्त में जा रही है, मैं पता ही नहीं है जला दी बस, अब रसोई बनाओ, रसोई सब तैयार सामग्री करके फिर चूल्हा चेताना चाहिए। जरूर बढ़ कर
आग चिताने के बाद ही आटा गूंदना चाहिए, पहले नहीं गूंदना ऐसा कितना
बोलो,
आटा तो उसके बाद ही गूंदा जाता है, आग को प्रज्वलित कर
आटा गूंदना चाहिए आध घंटा घंटा पहले, गेहूं का आटा है उसको गूंद करके ठीक तरह से करके फिर ऐसे ऐसे रख कर पानी डाल देना चाहिए ऊपर, जो उसकी कणी भीग जाती है, कणी भीजने से जो आटे गुण होता है वो तत्काल भिजोगल करो, वो गेहूं ऐसा नहीं होता भाई, गेहूं का बाजरी का आटा है वो पहले ऐसे सान कर रख दो तो खट्टा हो जाएगा, रोटी बढ़िया नहीं बनेगी, वो तत्काल यू करके तत्काल ही बनाया जाए रोटी बनती है। हरेक विधि है, हरेक
चूल्हा चिताने से पहले आटा गूंद सकते हैं,
पहले गूंदना चाहिए आध घंटा घंटा पहले, फिर वो फैला करके ठीक तीर गोदी ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे उसके पानी डाल देना चाहिए। घंटा बस भीज जाए फिर उसके फल का बनो बड़ा जायकेदार होगा भैया।
ये अंधविश्वास है कि आग जलने से पहले आटा गूंदना हो तो कोई मुर्दा होता है तब करना पड़ता है, पहले नहीं करना ऐसा एक अंधविश्वास है
ना, हमने नहीं सुना भी आज सुना में। हमारी विधि क्यों रसोई मैंने बनाई है, हम पढ़ते थे ना तो माँ थोड़ी बैठी वहां, हमने बनाते पाते थे।
शालिग्राम जी क्या है, वैष्णव मंदिरों में शालिग्राम जी देखे जाते हैं।
हाँ शालिग्राम जी है,
क्या है शालिग्राम जी?
शालिग्राम जी है और क्या है,
उत्पत्ति और महत्व के विषय।
उत्पत्ति गंडकी है नदी, वो गंडकी शुद्ध होता है, गंडकी नदी है गंडक, उस नदी का जो होता है पत्र वो शालिग्राम होता है। शालिग्राम में सोना होता है, शालिग्राम कई तरह के होते हैं, तरह तरह के। सनकादी के शालिग्राम जी दाल चने की दाल है जितना, उस गंडकी नदी में बड़ा पत्थर है तो शालिग्राम, छोटा कंकर हो तो शालिग्राम है, वो गंडकी सूत है, वो वहां मिलता है, वो शालिग्राम होता है। शालिग्राम जी के चंदन खूब से रहना चाहिए, तुलसी पूछो क्या खबर है, और पूछो कोई बात पूछ लो भाई, और वो जो अगर तो दिया।
हनुमान जी को इष्ट देव मानते हैं, स्त्री कहती है, माता बहन कहती है हनुमान जी को हम अपना इष्ट देव मानते हैं, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो स्वयं राम भक्त हैं, उनको क्या इष्ट देव मानो।
राम भक्त इस बात मानते हैं इष्ट देव,
गलत तो नहीं है?
गलत नहीं है, राम भक्त ने इष्ट मानना चाहिए, राम जी विमुख को इष्ट कभी नहीं मानना चाहिए।
शंकर भगवान की स्त्री की पूजा करनी चाहिए या नहीं?
शंकर की पूजा करनी चाहिए सदा, मैंने माताओं के लिए दूसरों को करावे जब छोटे छुए नहीं, शंकर जी को हनुमान जी को। अरे भाई राम भक्त है इस वास्ते पूजने की पूजने लायक है, हनुमान जी को देवता करना है अपमान करना है, हनुमान जी को भगवान का भक्त करना है सम्मान करना है।
धर्म का पालन करते हुए भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गृहस्थ धर्म का पालन?
अरे धर्म के पालन धर्म से विरति योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना, धर्म से विरति, धर्म का अर्थात पालन किया तो वैराग्य होगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, धर्म का ठीक पालन करेगा तो वैराग्य जरूर होगा, वैराग्य नहीं होता है तो उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया है, भोगों का भोगा है, संग्रह किया है, धर्म का पालन नहीं किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी वे कहते हैं हो न विषय विराग भवन बस था भात चौथपन और हृदय विषय बढ़ा भवन बसत भा चौथ पर बूढ़े हो गए, दम पर दुख अति लागा दुख के जन्म गए भाई भजन घर से निकल गए राजा रानियों में, तो धर्म का पालन बेरा हुआ कि नहीं हुआ ये तो होगा ही। धर्म का पालन क्या है, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना, ये कृष्ण धर्म है खास। स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर सुख पहुंचाना, क्योंकि ब्रह्मचारियों का पालन भी कृष्ण करते हैं, गृहस्थ का पालन भी कृष्ण करते हैं, वानप्रस्थों का पालन भी कृष्ण करते हैं, साधियों साधुओं का पालन भी कृष्ण करते हैं, तो कृष्ण माँ बाप है, माँ बाप पैदा करते हैं, पालन करते हैं, वो माँ बाप होते हैं। तो पैदा भी कृष्ण से होते हैं, ब्रह्मचारी पैदा हो कृष्ण से, गृहस्थ पैदा भी कृष्ण से, वानप्रस्थ भी कृष्ण से, सन्यासी भी कृष्ण से। तो गृहस्थ तो खास है, साधु संग उपास के ईश्वरतम धन्यो गृहस्थाश्रम, मुख्य तो गृहस्थाश्रम ही है। ये माँ बाप है, हमारे संत आए थे बड़ी से सत्संग हो रहा, तो बोले देखो भाई हम बात सुना, तुम हमारे माँ बाप हो और तुम ही हमारे बेटा बेटी हो। दूध बातें कैसे कि माँ बाप तो इस बात है कि हम कृष्ण से पैदा हुए, कृष्ण से ही पलते हैं, तो पैदा करते हैं पालन करते हैं माँ बाप होते हैं। बेटा बेटी कैसे, हम बूढ़े हो जाए बीमार हो जाए तो तुम ही सेवा करो, तो सेवा बेटा बेटी करे और कौन करे, बताओ। हमारे बेटा बेटी तुम ही हमारे माँ बाप, कितनी बढ़िया बात। और बढ़ने से सुनी एक संत आए थे, हमारी बात अच्छी लगी, बड़ी बढ़िया बात। संतों के पास ऐसी ऐसी बातें होती, बढ़िया बढ़िया, बहुत उत्तम, क्योंकि उन्होंने अपना समय लगाया है, जीवन लगाया है एक खोज में, तो वो पुस्तकों में जल्दी नहीं मिलती जितनी उनके पास मिलती, संग्रह किया हुआ बढ़िया बढ़िया चीजें।
एकदम नए नए आदमी,
और नया तो नया ही सहयोग कर दिया है।
क्या आप इस जमाने में किसी संत महापुरुष का नाम बता सकते हैं?
नाम नहीं बता सकते हूँ, क्योंकि आप अधिकारी न हो, तुम अधिकारी नहीं, इस बात नहीं बताते हो। तुम तर्क से पूछते हो, वो अधिकारी नहीं है, उसको नहीं बताना चाहिए, तिरस्कार होता सुनता हूँ। बोलो और बोलो। अब मूंगफली खरीदना आवे, हीरा बताने का, हीरा है वो क्या कर मूंगफली चाहिए। बर्तन दे उष्ण हरियाजार, हीर सो ना आवे, अन्न सो ना आवे, हरी हीरानी गांठड़ी गाहक बिना मत खोल, आशी हीरा पारखू बिठी मखे मोल, हरी हीरानी गांठड़ी गाहक बिना मत खोल, आशी हीरा पारखी मन मोल।
हमने सुना है सेठ जी कहा करते थे कि भजन से भी बड़ा काम गीता प्रेस की पुस्तक का प्रचार करना है,
तो प्रचार भजन तो तुम एक करोगे, प्रचार से कितना आदमियों को लाभ होगा। बहुत लाभ होगा, जितना लोगों को अधिक लाभ होगा उतने हमारे फायदा होगा। मैं भजन करने से उससे लाभ, भजन इतना नहीं कर सकते, पुस्तकों का प्रचार हर एक आदमी कर सकता है, तो भजन भी करना है और पुस्तकों का प्रचार भी करना है। पुस्तकों के प्रचार का बड़ा महत्व है, हमने तो पुस्तकों से बहुत सीखा है और सीखता हूं अब भी। हम तो सीखते हैं भाई, बहुत मिलता है। गीता पढ़ी है, गीता पर टीका भी लिख दी, फिर भी गीता में नए नए भाव मिलते हैं, नई नई चीजें मिलती हैं। अंत थोड़े आता है भगवान, भगवान के भावों का, मनुष्य के भी भावों का जल्दी जल्दी अंत नहीं आता, तो भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत, अनंत नाम, अनंत कथा, अनंत लीला, उनके भावों का क्या अंत है, अंत नहीं आता है। अनंत है भगवान, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत
वो कहते हैं बीकानेर से यहाँ सत्संग करने के लिए आए हूँ, हमारे कर्म में लिखा है, कर्म का फल है क्या है, नहीं आता तो क्या होता है, आ गया तो क्या होता
है। ये प्रश्न है मूर्खता का फल। सत्संग करो भाई, सत्संग है ना, ये कर्म का फल नहीं है, ये तो सत्संग नया करना है। कर्म का फल तो बुखार आ जाए वो कर्म का फल, व्यापार का नफा हो जाए तो कर्म का फल, नुकसान हो जाए कमरा कर्म का फल, कर्म का फल वो होता है। सत्संग भजन ध्यान तो श्रद्धा विश्वास का फल है, भगवान की कृपा का फल है। कभो करी करुणा न दे ही, भगवान कृपा करके शरीर देते हैं, ऐसे ही बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा से मिलता है, ऐसे ही करते ही पर सत्य से उसको मिलता है, बड़े भाग्य पाए भाग्य से मिलता है।